हम तो ये समझना चाहते हैं कि अपने आज को ठीक कैसे करें, पर अपने आप को अगर हम चेक करें, अपने अंतरात्मा की खोज करें, अपनी सोचनी को जरा कुरेद कर देखें, तो देखा जाए तो हम तो इसी ख्याल में बैठे हुए हैं ना अभी कि कई जन्मों जन्मांतरों के हम कर्म फल को भोग रहे हैं। और हम ये भी कहते सुनते हैं कईयों को, जी लिखी को तो कोई टाल नहीं सकता, पंजाबी में बोलते हैं जे वधी है ते कोई खतरा नहीं, जे कटी है ते कोई इलाज नहीं। मीन्स लिखी को कोई टाल नहीं सकता, अगर तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे श्वास ज्यादा लिखे हैं तो तुमको कोई खतरा नहीं है। अरे अगर तुमको मालूम है कि तुम्हारी लिखी हुई है और कोई खतरा नहीं है तो इलाज क्यों कराने जा रहे हो। ऐसे ही बोलते हैं जिसकी घटी है, जिसकी किस्मत में लिखा है कि श्वास खत्म हो गए हैं, जी हम भगवान से आए हैं, भगवान ने जितने श्वास लिखे थे हम उतने ही श्वास यहां लेकर आए हैं, उतने ही श्वास यहां से भोग कर चले जाएंगे, कोई नहीं बढ़ा सकता श्वास। तो अगर तुमको मालूम ही है कि श्वास बढ़ नहीं सकते हैं, फिर भी आखिरी श्वास तक क्यों हॉस्पिटल में जाते हो, क्यों डॉक्टरों के पास जाते हो? और अगर डॉक्टर बोल भी दे कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, फिर किसी साधु पीर फकीर संत के डेरे पे क्यों जाते हो? बोलो अरे नहीं, ये तो बढ़ ही नहीं सकते हैं श्वास। एक तरफ हम मान लेते हैं कि किस्मत में लिखी हुई है, हमारे माथे पे लिखे हुए भाग हैं, जितने श्वास हैं उतने हम काटेंगे यहां पर। तो अरे यार तुमको भूख लगी है मत खाओ, बोलो जितने श्वास है उतना जीना ही जीना। पर अगर तुम्हारे को इलाज का भी फिक्र पड़ जाता है, इलाज कराने जाते हो या धार्मिक स्थान पे जाते हो, हे भगवान जी इसकी बढ़ा दो, यार भगवान को फिर क्यों बोलते हो बढ़ा दो? भगवान जी ने तो तुम्हारी तकदीर के मुताबिक तुमको श्वास नहीं है, वो अपना क्या ओवर रूल कर दे तुम्हारे कहने पर? हम ये सोच ही नहीं रहे हैं, अपने आप कहे जा रहे हैं और फिर खतरों से डरते भी रहते हैं। अगर तुमको मालूम ही है कि लिखी है, अगर भगवान जी कोई बात पूरी कर देते हैं तो बोलते हैं किस्मत में लिखी है। अगर कोई बात हमारी पूरी नहीं होती है, हम अपने पूरे हीले वसीले करते हैं, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करते हैं, वो करने के बाद जब हम फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं किस्मत में लिखी नहीं थी, कर्म में लिखी नहीं थी जी, हो कैसे सकता है? फिर हम कई ऐसे ऐसे उसके साथ दलीलें देने लगते हैं, देखो जी उसने कितना कुछ किया तब भी नहीं प्राप्ति हुई, उसने ऐसे ही किया तो रातों रात अमीर हो गया, उसने ये किया उसने वो किया, ऐसे ऐसे हम किस्मत की कुछ अपनी तरफ से नोशंस, अपनी तरफ से इल्यूशंस या अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टोरीज को अपने आप ही अंधविश्वास में बिठा कर विश्वास बना देते हैं और एक दूसरे से ऐसी बातें करते रहते हैं। पर कोई हमसे पूछे अगर तकदीर है, कोई हमको पूछे अगर पिछले जन्म के कर्मों की सजा है या पिछले जन्मों के कर्म फल से हम भोग रहे हैं और उसी कर्मों के कारण जो हमने पिछले जन्म में कुछ भी कर्म किए थे उनके कारण ही हम यहां पर जो कुछ भी करेंगे, मींस दैट इज अवर डेस्टिनी, यहां पर हमसे जो कुछ होता है पिछले जन्म के कर्मों के कर्म सिद्धांत के मुताबिक होता है, तो फिर कोई इंसान अगर अच्छा है तो उसको अच्छा मत बोलो, ये तो अच्छा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म के कर्म का अच्छा है। और कोई अगर इंसान बुरा है तो उसको बुरा मत बोलो, कोई इंसान पाप करता है तो धर्म के स्थान पर उसको पापी बोलते रहते हैं, अरे बोलो नहीं ये तो पिछले जन्म के कर्मों करके है, इस बेचारे का क्या दोष? किसी को पुण्य बोलते जा रहे हैं, किसी को बड़ा भगवान का रूप बनाते जा रहे हैं, किसी को बड़ा धार्मिक कहते जा रहे हैं, किसी को बड़ा आस्तिक बोलते जा रहे हैं, अरे बोलो ये इसके बस में क्या है, ये तो पिछले जन्म के कर्मों का है। पर अगर पिछले जन्म के कर्म का ही है, अगर कोई इंसान बुरे रास्ते पर चल रहा है तो उसको धर्म के ठेकेदार, धर्म के प्रचारक धर्म क्यों पढ़ा रहे हैं? वो क्या धर्म सुनने के बाद उसका जीवन बदल जाएगा? वो तो मजबूर है, वो तो हेल्पलेस है, उसके तो हाथ बंधे हुए हैं कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण वो यहां पर जैसे कर रहा है। अगर कोई इंसान शराब पिए, अगर कोई इंसान किसी की चोरी करे, अगर कोई इंसान किसी का पर्स छीन ले, अगर कोई इंसान किसी के घर से कुछ चुरा लाए, कुछ भी गलत काम अगर कोई करे तो उसको सजा क्यों देते हैं, उसको जेल में क्यों भेज देते हैं? कोई इंसान किसी का पर्स छीने तो उसको पास जाके कहें अरे हम तकदीर पर विश्वास रखते हैं, पिछले जन्म के कर्मों पर विश्वास रखते हैं, ये तो तुमसे पिछले जन्म के कर्मों के कारण हो गया भाई साहब, अरे बहुत अच्छे अंकल जी घर जाओ पर्स भी ले जाओ, हम ऐसे करते हैं क्या? वहां पर अपने आप ही तकदीर का हम पत्ता फाड़ रहे हैं, वहां पर अपने आप ही कर्म फल को मानते हुए हम क्यों उसको काट रहे हैं? हमने क्यों कचहरी बनाई हुई है उसको सजा देने के लिए? हमने क्यों पुलिस उसको पकड़ने के लिए बनाई हुई है? कर्म मानो, पूरे सारा एक तरफ मानना चाहिए ना, एक तरफ होए। या तो हम कर्म थ्योरी को माने और या हम आज में जिए। काश हमको ये वाला दृष्टिकोण समझ में आ जाए। तकदीर मानते हुए भी तकदीर को मान नहीं रहे हैं, तकदीर को मानते हुए भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानते हुए भी किसी को अच्छा अच्छा कह के आसमान पे हम चढ़ा रहे हैं और किसी को बुरा बुरा नास्तिक पापी कह कह के हम समाज में उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको कॉर्नर कर रहे हैं, उसको दुरकार रहे हैं, उसको दूरे दूरे कर रहे हैं। हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? हम बोले बुरा, जैसे गुरबाणी में आया, बुरा भला कहो किसनु कहिए, सगले जी तुम्हारे। भगवान जी सारे जी तुम्हारे हैं, यहां पर भला बुरा कोई नहीं है। ये तो बात मानने वाली नहीं। इसमें भी क्या हुआ, भला और बुरा की बात नहीं चल रही, इसमें चल रहा है अपनी दृष्टि को सम दृष्टि करने का ढंग। इसमें यह नहीं कहा जा रहा भी बुरा इंसान बुरा ही रहे, इसमें यह कहा जा रहा है कि मेरी नजर में सारे भगवान जी आपके बंदे हैं, आपने बनाए हैं, इसलिए मैं किसको बुरा भला कहूं। पर तकदीर के मानने वाले, कर्मों का फल मानने वाले, किसी को भला किसी को बुरा, किसी को संत किसी को पापी, किसी को शैतान किसी को आस्तिक किसी को नास्तिक, किसी को पापी और किसी को पुण्य, किसी को धार्मिक और किसी को अधार्मिक, किसी को संत और किसी को चोर, किसी को संत और किसी को शैतान, ये कह रहे हैं ना। अरे कर्मों का फल मान लो, बोलो, इससे कोई गलती नहीं हुई है। पर धर्म का पाठ पढ़ाने वाले बोलते हैं तुम बुरे रास्ते पर चल रहे हो, अच्छे कर्म किया करो। वो कैसे अच्छे कर्म करे भाई, वो तो कर्मों का फल भोग रहा है। फिर धर्म की जगह कहां रह जाएगी? अरे धर्म के ठेकेदारों, धर्म के प्रचार करने वालों, लोगों को बोल रहे हो कर्मों का फल भोग रहे हैं और अब लोगों को बोल रहे हैं कि धर्म पर चलो। अरे अगर लोग ये मान जाएं कि कर्मों का फल भोग रहे हैं तो लोग तुम्हारा धर्म क्यों पढ़ेंगे? अगर कोई इंसान शराब पीता है, कोई बुरा कर्म करता है, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूं, तुम ही तो बोलते हो कि धर्म में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है जी के पिछले जन्मों का कर्म फल भोग गए। ये दरअसल एक ख्याल है, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, ये दरअसल एक ख्याल दिया गया कि अगर तुमने यहां पर किसी की जगह जाकर चोरी की है तो उसने पिछले जन्म में तुम्हारी की होगी, इसलिए ये चक्कर जो चला है, उसने की तो तुमने किया, या तुमने किया और उसने भोगा, या तुम्हारे पैसे अगर कोई ले गया है तो तुमने पिछले जन्म में उससे लिए होंगे, या तुम अगर किसी का मार के लाए होगे तो नहीं नहीं ये तुम्हारे ही है क्योंकि पिछले जन्म में उसने तुमसे छीने होंगे, या किसी भी शक्ल में इसको मान ले भी पिछले जन्म का कर्मा फल है। तो ये इसलिए कहा गया था ताकि ये बार बार चक्कर चलता ना रहे, इसलिए आज इस सर्कल को, इस विशेष सर्कल की इस नस को यहां से काट दे और ये खत्म हो जाए। पर पीछे उसके ख्याल क्या था, तात्पर्य यह था कि तू अपना आज ठीक कर ले, ये नहीं था कि पिछले जन्म के कर्मों के बारे में कोई न्यूज रील चल रही है, कोई वीडियो को रिवाइंड किया जा रहा है, बार बार चला के दिखाया जा रहा है, ये नहीं था। वो किसी के पास नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ ख्याल ही था। तो ये ख्याल ने इंसान को कहां पहुंचा दिया कि इंसान प्रेजेंट में रहता नहीं है, सिर्फ तकदीर का, कर्मों का फल मान के भोगता जा रहा है, और इसीलिए चल गया गुड लक, बैड लक, किस्मत, फॉर्च्यून, अनफॉर्च्यून और राशिफल, हाथ देखना, चांद सितारे, किस्मत। अब ये कर्मों को काटेंगे कैसे? अगर कुंडली में कुछ गलत मलत आ गया तो पंडित जी को कुछ दो या किसी धार्मिक ठेकेदार को कुछ दो और उसको कटवाओ। ये सब कुछ इसीलिए पैदा हुआ, तकदीर को कर्मों को काटने का ख्याल आ गया ना, पिछले जन्म के कर्मों, पर प्रेजेंट में क्या कर्म कर रहे हैं इस तरफ से ख्याल हट गया, बिल्कुल बुरी तरह से ड्रिफ्ट हो गए, अपने निशाने से चूक गए। अब तकदीर को भी मानते हैं और आस्तिक और नास्तिक भी मान रहे हैं और पापी पुण्य भी मान रहे हैं और किसी को बुरा भला भी कह रहे हैं, और तकदीर के मानने वाले किसी को बहुत धार्मिक बनाकर ऊंचा ऊंचा करके उसको पूजना शुरू कर रहे हैं, और किसी को पापी कह कह के समाज से कोने पे कर रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं, उसको निंद रहे हैं धर्म के लोग, ये कहावती धार्मिक लोग जो धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। धार्मिक स्थान बुरे नहीं है, उन लोगों के ख्याल और इस अमीर गरीब और अगले पिछले जन्म और कर्मा फल के कारण हम लोग अपने प्रेजेंट से उखड़े हुए हैं। ये जो हम सच से, वर्तमान से, प्रेजेंट से उखड़े हुए हैं, इसके कारण हमको मालूम नहीं है कि हमारी साइकोलॉजी पे क्या असर हो रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रही। अगर हम अपने चारों तरफ देखें या अपने आप को ही देखें, हम बिल्कुल अनकंटेंटेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, अनहैप्पी हैं, असंतुष्ट हैं, असंतोखी हैं, और हम खुश नहीं हैं, और हम बीमार भी रहते हैं, और हम मानसिक तौर पे सबसे उखड़े उखड़े रहते हैं, चिड़े चिड़े रहते हैं, लोग अच्छे नहीं लगते हैं, सारी दुनिया बुरी लगती है, सारे लोग चोर लगते हैं, पर हम तो तकदीर मानने वाले हैं। हमने तकदीर के या पिछले जन्म के कर्मा थ्योरी को मानकर क्या फायदा लिया? हम जिन लोगों को देखते हैं वो भगवान पर विश्वास तो रखते हैं, पर तकदीर को बदलाने के लिए सिर्फ, भगवान पर विश्वास तो रखते हैं पर असंतुष्ट हैं, तभी तो जाते हैं भगवान जी के आगे जाके प्रार्थना कर करके या गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाके किसी तरह भी, या खुदा जी, अल्लाह जी, वाहिगुरु जी, राम जी, बस मेरे को कुछ दे दो, मेरे कर्म काट दो, भगवान को इसलिए वो यूज कर रहे हैं ना, दे आर मिस यूजिंग गॉड। पर उनकी असंतुष्टता, उनका भगवान के पास जाके दात मांगना, उनका ये डिससेटिस्फेक्शन नहीं है? हमने तकदीर को मानकर, कर्मा थ्योरी को मानकर क्या प्राप्त कर लिया? पर जो लोग धर्म को बड़ा जोर शोर से ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, सोच रहे हैं हम बड़े धार्मिक हैं, अरे अगर तकदीर को मानते हो तो उनकी नजर में अगर कोई इंसान गलती कर जाए तो वो किसी को माफ नहीं करते हैं। अरे तकदीर मानते हो, वो कर्मों के फल के कारण उसे गलती हुई है, उसको माफ कर दो, उसको माफ नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम, उसी समय भगवान जी के पास जाके बोलते हैं, मैं बहुत अवगुणी आ रहा हूं, मैं बहुत पापी हूं, मेरे कर्मों को माफ कर दो। आप उसके कर्मों को माफ नहीं करते हैं किसी इंसान को अपने समाज में, और आप अपने कर्मों की माफी मांगने के लिए भगवान जी के पास जा रहे हैं, हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अवगुणी आ रहे हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमको माफ कर दो। अरे अपने पाप तो भगवान जी से गुनाह माफ कराने के लिए कर्मों की थ्योरी को कटवाने जाते हैं, और किसी के लिए काटने को तैयार नहीं है। जबकि जब प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में लिखा है दूसरों को माफ करो, प्रार्थना में लिखा है वेख के अनडिट करना, भाई तुमने अगर देखा भी है तो किसी के गुनाह को माफ कर दो, देखे को अनदेखा कर दो। पर तकदीर के मानने वाले, ये कर्मा थ्योरी को मानने वाले को ये तो गवारा नहीं है कि हम किसी इंसान को माफ कर दें, चाहे वो उसकी गलती ना भी हो, उसको जबरदस्ती कहेंगे कि तेरी ये गलती है, उसको जबरदस्ती समाज में हम बुरा कराएंगे ताकि हम ऊंचे ऊंचे आस्तिक कहला सकें और अपने आप को भगवान जी से अपने कर्म कटाने के लिए जा रहे हैं। अरे कर्मा थ्योरी मान रहे हो तो उसको तो सजा भी मत दो, लेकिन अपने कर्म कटाने क्यों चले जाते हो? भगवान जी क्यों काट देंगे? अगर भगवान जी ने लिखे थे तो वो काटेंगे क्यों भाई? अगर भगवान जी को बोलते हैं तुम अंतर्जामी हो, तो भगवान जी अंतर्जामी, उनको मालूम है मैं इसके कर्म लिखूंगा और ये मेरे धार्मिक स्थान पे आके अपने कर्म कटवाना चाहेगा, तो भगवान जी लिखते ही क्यों? भगवान जी क्या सिर्फ यही वेले काम करते रहते हैं, भाई पहले वो लिखें और फिर वो आपके पास आके आपके प्रार्थना या आपकी स्तुति सुनकर आपकी उस्तत आपकी तरफ से किए गए मंत्र रटन या कोई भी आपकी मानी हुई मन्नत या सुकना या कोई कैसा खास पाठ को बार बार करने से फिर आपकी लिखी हुई को काट दें भी, अच्छा चलो मैंने काट दिया, अपने आप लिखी और अपने आप काट ली। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं देख रहा था एक बार एक इंसान कार चला के जा रहा है और चलाते चलाते उसने ऐसे हाथ दिया, शीशे से बाहर हाथ निकाला, और जब उसने ऐसे हाथ दिया तो पिछली कार वाले ने सोचा शायद ये राइट टर्न करेगा, सीधे हाथ पर मुड़ेगा, तो वो इस हाथ से आया कार लेकर, तो इसने अपनी कार इधर घुमा दी, टक्कर हो गई दोनों की। तो वो कार वाला उतर के उसको पूछता है, अरे जब तुमने राइट हैंड दिया इस तरफ आपको मुड़ना चाहिए था तो तुम इधर क्यों मुड़ गए? बोलता है मैंने तो इधर ही मुड़ना था। बोलता कैसे, आपने तो हाथ ऐसे दिया खिड़की से बाहर निकाल के। बोलता मैंने हाथ ऐसे दिया था ना, आपने वो तो देखा लेकिन आपने ये नहीं देखा जब मैंने ऐसे कर दिया था, अपने आप ही लिखा और अपने आप ही काट दिया। अरे ये क्या हुआ? ऐसे तो फिर तभी हमारे जीवन में रोज टक्करें हो रही हैं। तकदीर का कर्म का फल भी मान रहे हैं पर मालूम नहीं कि हमारे दिमाग में हमारे पूर्वजों से लेके और आने वाली जनरेशंस, आने वाली पनीरी, आने वाली जो कोई भी पनीरी है, जो कोई भी नई आने वाली पीढ़ी है, वो हमको माफ नहीं करेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कर्मों का फल तकदीर किस्मत को मान मान कर और ये जो जोडियक साइन के ख्यालों को मान मान कर हम उसमें दबते जा रहे हैं, उसमें खूबते जा रहे हैं और उनके मनों में भी ये डर के कारण डालते जा रहे हैं, वो हमको माफ नहीं करेगी आने वाली पनीरी कि हमको ये क्या तुम तकदीरों का, क्योंकि हमारी अपनी साइकोलॉजी पे उसका बैड इफेक्ट हो चुका है। ये एक मेरे बोलने से बदल नहीं जाएगा, ये एक मेरे बोलने से लोगों के मन में से तकदीर का भुलेखा या भ्रम उतर नहीं जाएगा, कई हजारों साल लगेंगे, हजारों सालों से तो ऐसा दिमाग में बिठाया गया। हम क्यों मानते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं मानते कि भगवान जी आपके घर में न्याय है, भगवान जी आपके घर में एक यूनिक लॉ है, एक नियम है, एक पक्का कानून है, एक अटूट कानून है आपका, वो नहीं बदला जा सकता। काश अगर ये हमको समझ में आ जाए तो हम उनको जाके नहीं कहेंगे कि मुझको माफ कर दो, हम किसी का बुरा भी नहीं सोचेंगे और हम अपने कर्मों की सजा भोगने को मांगेंगे, हम बोलेंगे मैंने ये गलत काम किया, मुझको इसकी सजा ही होनी चाहिए, मैं इसकी सजा जब तक भोग न लूं तब तक मुझको चैन नहीं आएगा। लेकिन हम तो रिश्वत देके छुट जाते हैं, हम तो भगवान जी की वहां पर कोई सुखना या मन्नत मान के उनके वहां प्रसाद चढ़ाकर प्रार्थना करके छूटने का यत्न करते हैं। नहीं, अगर भगवान जी का ये नियम हमको समझ में आ गया कि आपका अटूट नियम है, आपके अटूट नियम में अगर मैं अच्छे ख्याल और अच्छे काम करूंगा तो मेरे को आज चैन मिलेगा, और अगर मैं बुरा सोचूंगा, बुरे काम करूंगा तो मेरा जीवन कुर्बल कुर्बल हो जाएगा, मेरे जीवन में उथल पुथल हो जाएगी, मेरा जीवन कलजुगी हो जाएगा, मैं मानसिक तौर पे शांति नहीं ले सकूंगा, मुझको रात को भी सोते सोते नाइटमेयर होंगे, मैं हर टाइम डरा डरा रहूंगा, हर टाइम सुख की प्राप्ति के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन, उखड़ापन और हमेशा इरिटेटेड मैं रहूंगा। काश इसको अगर हम समझ लें, इस प्रचार को हम जोरदार करें, इस बात की खुलकर विचार करें कि इसका हमारी साइकोलॉजी पे कितना बुरा असर पड़ा अगर हम तकदीर मानते थे, अगर हम कर्मकांड की थ्योरी को, कर्मों की फल की थ्योरी को मानते थे, तो हम एक नई दिशा की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। अगर हम इस तकदीर वाले पिछले जन्मों के कर्मा फल के बारे में अपने मन के अंधविश्वास को उड़ाकर ये विश्वास बिठाएं कि हम पहले गलत सोचते थे, तो हमारे जीवन में कुछ बदलाहट आ सकती है। और अगर हम नहीं समझेंगे, अपने आप को धर्मी भी समझते जा रहे हैं, अब हम सारे गीता में सुनते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, ये तो उलट हो गया हमारी सोचनी के। अगर हम गीता पर विश्वास रखते हैं तो हमको कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पर हम तो कर्मा थ्योरी को मान रहे हैं, हम पिछले जन्म की किस्मत को मान रहे हैं और धर्म के कर्म कांड इसलिए करते जा रहे हैं कि फल ये मिले कि वो वाला कर्मा थ्योरी को काटा जा सके। अरे अगर हमको विश्वास है गीता पर तो हमको चाहिए कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, और इस विश्वास पे हमको पक्के रहना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि गीता को झुठलाया नहीं जा सकता। धर्म की बात जो भी सच्ची है वो तो सब जगह सच्ची है ना, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख ईसाई की हो, जिस मर्जी ग्रंथ की हो, अगर उस बात पे हम विश्वास रखते हैं तो हमको चाहिए कि हम उसको टालें ना, हम उसको झुठलाएं ना, उसके उलट क्रियाशील ना हो। कर्म किया है तो ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म भगवान जी अब आप काट दो, अमीर से और अमीर बना दो लेकिन गरीब ना होने देना, गरीब से अमीर बना दो, ये तो पिछले जन्म के कर्म काटने की बात हो गई। अगर गुरबाणी में से भी देखें तो गुरबाणी में आता है, सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, काहू फल की इच्छा नहीं बाछ है, किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एक जगह आता है कर्म कर्त होवे नहीं कर, तू कर्म तो कर पर यह सोच कि मैंने नहीं किया। पर हम तो धर्म स्थान पर जाकर धर्म को इसलिए प्रयोग में ला रहे हैं, धर्म को इसलिए यूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि मेरे कर्म को काट दो पिछले जन्म के। आज के मीडिया को यूज करके उसको प्रयोग में ढंग से लाकर, चाहे वो लिखाई के रूप में लिटरेचर हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो और चाहे वो इंटरनेट हो, उसको यूज कर करके हमको चाहिए कि लोगों के मन में भगवान जी के अटूट नियम का, अटूट इंसाफ का, लोगों के मन में पक्का विश्वास बिठा दें और लोगों के मन में से अंधविश्वास की ये जो झुग्गी बनी हुई है इसकी छत को उड़ा दें। जैसे बोलते हैं ना कबीर साहब, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सभे उड़ानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। तो इसकी छत को उड़ा दें, ये अंधविश्वास की छत को उड़ा देने के लिए हमको जोरदार प्रचार करना चाहिए और सच क्या बताना चाहिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गुरुवाणी में से देखें तो हमारे पास कितने ऐसे प्रमाण हमको बचपन से सुनने में मिलते हैं, बोलते हैं जी के चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेता है। मींस मनुष्य को ही हिम्मत करनी पड़ेगी सच की तरफ जाने के लिए, मनुष्य को ही सब प्राप्ति के लिए आप कदम उठाने होंगे। पिछले जन्म की तकदीर और किस्मत के कर्मा फल के कारण नहीं। यहां अगर ये हमने जगा लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको द लॉज ऑफ द नेचर इज विल ऑफ गॉड, जो कुदरत के कानून नियम है इस ब्रह्मांड में सिस्टम में, वो ही भगवान जी की मर्जी है, तो हम इसका जोरदार प्रचार कर सकेंगे। हम इसका जब ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे तो लोगों के मन में ये बात पक्की करा सकेंगे कि तकदीर और कर्मा फल पिछले जन्म का कुछ नहीं होता, कुदरत का भगवान जी का नियम, यूनिक लॉ जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या है, जैसा बीजेंगे वैसा काटना होगा, पर पिछले जन्म का अगले जन्म में नहीं, इस जन्म का बीजा हुआ अगले जन्म में नहीं, पिछले जन्म का इस जन्म में नहीं, इस जन्म का यहां पर ही बीजेंगे और यहीं पर काटेंगे। और हम जो कुछ भी अपने जीवन में किसी भी कर्म का प्रतिकर्म देख रहे हैं ये पिछले जन्म का नहीं है, यहीं पर हमने बीजा है और यहीं पर हम उसका फल भोग रहे हैं, हाथ के हाथ, अगर हमको समझ में आ जाएगा कि गुरबाणी में लिखा है जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, मीन्स जैसा इंसान बीज बोता है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बीजता है वैसा ही तेरे को काटना है। ये तो नहीं हो सकता ना लोड़े दाख बिजोरियां किक्कर बीजे जट, भाई ये तो नहीं ना हो सकता हम बीजें कीकर और वहां से आम निकलें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हमको यही तो समझना है कि कुदरत के कानून नियम सिस्टम में जो हम अभी कर रहे हैं उसका नफा या नुकसान साथ के साथ हमको अभी मिल रहा है। जो इंसान बुराई कर रहे हैं, जो इंसान निंदा चुगली कर रहे हैं, जो इंसान किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, जो इंसान किसी के बारे में बुरा करने का सोच रहे हैं, जो इंसान किसी का किया बुरा का वैर अपने मन में अभी कमा रहे हैं, ये अपने आप में तो गुनाह की सजा है। हमको ये समझना है इसकी सजा बाद में मिलेगी, नहीं अभी जो इसी वक्त हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में गड़बड़ हो रही है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं और उनसे जो हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है, हमारी सोचने की जो कला है उसमें जो गड़बड़ हो रही है, ये हमको सजा अभी यही मिल रही है। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, मीन्स जो हम यहां पर अभी कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसका फल अभी साथ के साथ भुगत रहे हैं। अगर ये हमको समझ में आ जाए तो तकदीर और पिछले जन्म के कर्मा फल की थ्योरी से हम छूट सकते हैं। ये बात अगर हमको समझ में आ जाए कि अगर मैं यहां पर अभी अच्छा करता हूं तो ये अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद मुझको स्वर्ग मिलेगा, मैं दान करूं कि मुझको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मैं ये अच्छा काम करूं कि मरने के बाद मुझको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं ये ना सोचें। साथ के साथ ये भी सोचें कि अगर मैं बुरा अभी करूंगा तो क्या वो कर्मा थ्योरी के मुताबिक मरने के बाद मुझको नरक मिलेगा, अगर मैं बुरा अभी करूंगा तो क्या मरने के बाद मुझको नरक में जम ले जाएंगे, मैं अगर अभी बुरा करूंगा तो क्या मरने के बाद भगवान जी का धर्म राजा चित्रगुप्त मेरा लेखा मांगेगा और मेरे को सजा देगा, जम मुझको बाद में चिपटेंगे, मेरे बाल खींच के बाद में ले जाएंगे मरने के बाद। अगर इसके उलट हम ये सोच लें अगर मैं अभी बुरा करता हूं तो बुरा करने के बारे में सोचना अपने आप में मेरे को अभी सजा मिल गई, करूंगा तो बाद की बात है ना, और बुरा सोचा किया नहीं सजा मिल गई, सोचना अपने आप में सजा है। और अच्छा सोचना किसी के बारे में, जैसे अरदास में बोलते हैं सिख लोग तेरे पाणे सरबत दा भला, सबका भला लोचते हैं। कई हिंदू लोग मंदिर में बोल रहे होते हैं विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, पर ये ऐसे कहने से तेरे पाणे सरबत दा भला सबका भला थोड़ा ना हो जाता है, कहने से विश्व में शांति थोड़ा ना हो जाती है, पर ये कहने से इंसान को अपने अंदर से तो समझ आती है कि मैं सबका भला चाहता हूं, ये अपने आप में रिवार्ड है, अभी मिल गया, अच्छा सोचा लोगों के बारे में तेरे मन को चैन आया, तुम जलते नहीं हो लोगों से, तुम लोगों का भला मानते हो, तुम्हारे मन को शांति है। लेकिन अगर लोगों का बुरा मानते हो तो तुम अभी नरक में हो, मरने के बाद नरक नहीं जाओगे, ऑलरेडी राइट नाउ एट प्रेजेंट यू आर इन हेल। काश हम इस तकदीर वाले कर्मा थ्योरी वाले और मरने के बाद वाले इस मृग जाल को समझ लें तो हम प्रेजेंट को फिक्स कर पाएंगे। गुरबाणी में आता है पर का बुरा न राखो चीत, मतलब किसी पराए का मन में बुरा मत रखो, जैसे भगवान जी निर्वैर हैं ऐसे निर्वैर हो जाओ, रात गई बात गई भूल जाओ। पर का बुरा न राखो चीत, अगर रखोगे तो तुमको सजा पता क्या है? बुरा तुमने अपने चित में रखा, तुम बीमार हो गए, तुमको सजा मिल गई। और अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा? पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। मींस तुमको दुख नहीं पहुंचेगा अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर सबको अपना मीत समझते हो, किसी को दुश्मन नहीं समझते, तो क्या होगा? सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। फिर क्या है? यही तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। दरअसल हमारे आज के अभी के प्रेजेंट के जो कर्म है ना, यही प्रधान है। काश हमारा ध्यान प्रेजेंट की तरफ पड़ जाए। ये कर्म ही प्रधान है, और इन कर्मों को जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, इनको जाग के देखना, इनका दृष्टा बनना कि मैं क्या करता हूं, मैं कैसे उठता हूं, मैं कैसे खाता हूं, मैं कैसे बातें करता हूं, मैं कैसे दूसरों को दबाता हूं, मैं कैसे किसी से नफरत करता हूं, मैं कैसे किसी को गाली निकालता हूं, मेरे रोज के पल पल के क्या कर्म है, क्या कभी मैं अपने परिवार में बैठ के उनका सुख दुख पूछता हूं, या टीवी देखते देखते खाना खाता जाता हूं, मैं जाग नहीं रहा। मेरे प्रेजेंट के कर्म क्या है? मैंने तो कभी खाना भी रेलिश करके नहीं खाया। मैंने तो लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गोलियां चलाते हुए, फिल्म देखते देखते खाना खाया। मुझे तो मालूम ही नहीं है मेरे अंदर जा भी क्या रहा है। प्रेजेंट के कर्मों को जाग कर देखना और उसके अगली पार्ट को देखना, मींस उसके जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस, जो बुरे रिजल्ट निकलते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना पल पल रोजमर्रा की जिंदगी में। यही तो अपने आप में भगवान जी का सिमरन है। अगर हम धर्म की तरफ से भी देखें तो जो इंसान जाग रहा है, उठत बैठत सोवत त्याय मार्ग चलत हरि हर गाय, इसका क्या मतलब है भाई? उठते बैठते जागते सोते हम हर कर्म ना जाग कर करते हैं। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, अलर्ट। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंट अवस्था। अगर ये हम समझ लें कि मैंने पल पल के अपने कर्म को वाचना है, देखना है, तो पता लगेगा अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो। जैसे बोलते हैं ना श्लोक, पवन गुरु पाणी पिता, गुरुवाणी में आता है, माता तर्त महत दिवस रात दोए दाई दाया, खेला सगल जगत। अब आगे बोलते हैं चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य धर्म हदूर। कोई ये नहीं कि ऊपर भगवान जी वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, यहां पर धर्म बैठा है, यहां पर वो धर्म कांटा है जो तुम्हारे ट्रक के ऊपर तुमने जो कुछ लादा हुआ उसको तोल रहा है। तुमने अपनी तकड़ी में जो सोना डाला है उसको तोल रहा है, धर्म कांटा यहां पर। वाच्य धर्म, ये धर्म राजनिया मरने के बाद, धर्म हदूर, जो प्रेजेंट में धर्म है ना, ट्रू रिलीजन, वो तुमको देख रहा है। अगर अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो तो वो देख रहा है। तो अपने आप से तुम्हारे कर्म के कारण तुम भगवान जी के पास हो। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्म अच्छे हम करते हैं या अच्छी सोचनी सोचते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भी करते हैं, तो क्या होता है, हम भगवान जी के पास हैं, के नेड़ है। और अगर बुरा सोचते हैं तो दूर हो गए, हमको अभी से ही सजा मिल गई। अगर इस बात को हम समझ लें कि ये भगवान जी की निरंतर याद है, अगर इस याद को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तित सरवरण है पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह, पग नहीं चाला हम देखा तह डूबिए ले। मन एक न चेतस मूड मना, तूने याद नहीं रखा ना भगवान को, मतलब तूने अपने पल पल का ध्यान नहीं ना किया अपने करनियों का, तो क्या हुआ, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, तेरे गुण गल गए। हमने देखा कि ऐसे लोगों के गुण जल जाते हैं, हर बिसरत सदा खुआरी हो जाता है। इस प्रेजेंट को, नाव को, अभी को अगर हम समझ लें तो पिछले जन्म के कर्म और पिछले जन्म की किस्मत इसके बारे में समझ आ जाएगी कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर इस पॉइंट से आगे चलें तो हम ये कहेंगे अमीर चाहे कोई है, गरीब चाहे कोई है, इसका तकदीर और कर्मा फल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या होगा, जो अमीर है ना वो अपने जो पड़ोस में गरीब है ना उसके भले की सोचेगा, ये नहीं सोचेगा नहीं नहीं हम इसका क्या करें, ये तो पिछले जन्म का गरीब है, हम तो पिछले जन्म के अमीर हैं, ये अपना पिछले कांटे बीजे थे इसने कांटे पे खड़ा है, हमने पीछे फूल बोए थे, हमने अच्छी खेती की थी इसलिए हम सुख भोग रहे हैं, हम इसका क्या करें। अभी तक दुनिया यही सोचती है ना, अरे अपने कर्मों का भोग रहे हैं हम क्या करें, अरे इस किस्मत में ऐसे लिखा था, इसके भागों में ही ऐसा लिखा था, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हम उसका कोई भी सही हल नहीं करते। पर अमीर अपने पड़ोस वाले गरीब का ध्यान करेगा और जो गरीब है वो पिछले जन्मों का कर्माफल ना मानकर सजा को नहीं मानेगा और बोलेगा कि मुझको भी खड़ा होकर मेहनत करनी चाहिए ताकि इन अमीरों की तरह मैं भी अपने सुख की प्राप्ति करूं। तो क्या होगा, हम दोनों तरफ से हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में जो कहीं भी कोई गलती हो रही है उसको ठीक कर पाएंगे। ये जो अमीरी और गरीबी का इतनी दूरी बढ़ती जा रही है, अमीरी और गरीबी की इतनी ये जो दूरी बढ़ रही है, ये खाई बड़ी होती जा रही है, इससे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और हम किस पद पे विश्वास रख रहे हैं। हमको तो ये चाहिए कि गरीब को ये समझाएं कि तुम भी उद्यम करो, तुम भी परिश्रम करो, तुम भी मेहनत करो, उद्यम करें दिया जियो तू, कमाव दिया सुख पुंज, त्याएं दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। मींस हमको उद्यम करना होगा, ये बेनिफिट, ये लाभ हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ये तकदीर वाले पॉइंट से आउट होंगे, ये सोचनी से जब हम आउट होंगे तो हमारे को अंतर तक जाकर ये वाला फायदा पहुंच सकता है। जब अंदर तक ये बात चली जाएगी तभी तो हमारा एक्शन वैसा होगा, तभी तो हम वैसे वाले कार्य कर सकेंगे। इस विचारधारा की गहराई तक जाने से पता लगेगा कि कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं और कुछ लोग कामयाब क्यों नहीं होते। हम बोल देते हैं देखो जी किस्मत का लिखा हुआ है, कुछ लोग तो ऐसे कामयाब हो गए, कुछ लोग देखो कितनी मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हुए। अगर एक बारी हम अपने मन में से ये विश्वास हटा दें कि पिछले जन्म के कर्मों का तकदीर का कर्मा फल नहीं है तो हमको इसका भी उत्तर मिल जाएगा, हमको इसकी जड़ की गहराई तक जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस मुसीबत को, इस झगड़े को सुलझाने का कोई सुझाव मिल जाएगा, कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। जब हम देखेंगे कि जो भी इंसान मेहनत करता है, जैसे गुरबाणी में आया कि अगर इंसान सच की मेहनत करे तो भगवान जी उसकी मेहनत का एक तिल भी जाया नहीं करते हैं। काम क्रोध दोए करो बसोले गोडो धरती पाई, ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरत ना मेटिया जाई, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जा सकती है, 1% भी जाया नहीं जा सकती है मेहनत। लेकिन हम सोचते हैं किसी ने देखो इतनी मेहनत की और वो कामयाब नहीं हुआ, वो गरीब का गरीब रहा, तो अब हमको सोचना होगा कि उसके पीछे क्या कारण है। पर पहले हमको कर्मा थ्योरी से आउट होना होगा, पिछले जन्म की कर्मा थ्योरी से पहले हमको तकदीर वाला दिमाग से पॉइंट हटाना होगा, तो हमको समझ आएगी। जब हम ये तकदीर वाली सोच से ऊपर होंगे तो हमको मालूम होगा कि कामयाबी की अपने आप में एक परिभाषा है, किसी मजहब की धर्म की नहीं, सारी दुनिया में कामयाबी की एक परिभाषा है, लगन से काम करना, मेहनत से काम करना, सच की तरफ सही ढंग से बढ़ना। वरना कई दफा क्या होता है, हम मेहनत कुछ और कर रहे होते हैं, रिजल्ट कुछ और मांग रहे होते हैं, हमारी मेहनत कहीं किसी गलत जगह लग रही होती है और हम उसके आंसर, उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम कहीं और ढंग में, किसी और ढंग से मांग रहे होते हैं। जब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ही इस धरती पर चूहे को, चूहा मेहनत तो बड़ी करता है, सारी रात कागज काटता रहता है, कुतर कुतर करता रहता है, सारी रात तुम्हारे कपड़े काटता रहता है, सारी सारी रात, सारा सारा दिन तुम्हारे जहां पर नोट पड़े हुए हैं उसको नहीं मालूम ये डॉलर हैं कि कौन से पैसे हैं, वो उनको काटता रहता है, मेहनत तो बड़ी करता है। अब कोई बोले कि देखो चूहे ने दिन रात कितनी मेहनत की, सोया भी नहीं, 24 घंटे इसने लोगों के नोट काटे, इसने लोगों के कपड़े काटे, इसने लोगों की कीमती कीमती किताबें और कापियां काटी, और देखो ये पढ़ा नहीं हुआ, ये देखो अमीर नहीं हो पाया, तो उसकी मेहनत गलत जगह है ना। पर चूहे के कंपैरिजन में मैं पढ़ रहा था कि कीड़ी इतना काम करती है कि कीड़ी को मालूम हो जाए कि अभी से 72 घंटे बाद यहां पर बारिश से जो फ्लड आएगा, ज्यादा पानी आ जाएगा, तो कीड़ी उससे पहले, जिसको चींटी बोलते हैं, चींटी उससे पहले ही अपने खाने को इतनी ऊंचाई पर टांग देती है। ये तुम सब लोग डिस्कवरी में देखते हो कि वो जो पानी आता है, जो बाढ़ का पानी आता है, वो जहां पर चींटी टांगती है अपने खाने को उससे नीचे रह जाता है, पर 72 घंटे पहले ही वो उसको वहां पर टांग आती है, इतनी मेहनत करती है। अब आप चूहे और चींटी की मेहनत को देखो। इसीलिए गुरबाणी में लिखा है किछ लाहे ऊपर का लिया है। अगर तूने मेहनत करनी है तो किसी कीमती काम के लिए कर, पर उस कीमती काम के ठीक रिजल्ट्स तेरे को मिलेंगे अगर तू उसको ठीक ढंग से करेगा। हम लोग ठीक ढंग से तो करते नहीं है, हमको कामयाबी के राज तो मालूम नहीं है। जहां पर मालूम है वहां पर हम किस्मत से जोड़कर एस्केप कर जाते हैं। अब अगर हम देखें कि कामयाबी के कुछ राज हैं, अपनी दृष्टि को खोलें और समझें कि यह पिछले जन्म के कर्माफल की बात नहीं है। असलियत में जो इंसान कामयाब हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं ये अपने जीवन में बड़ा कामयाब हुआ, तो उसके पीछे मेहनत है कोई, वो रातों को जागा होगा, उसे दिन रात मेहनत की होगी, उसकी माँ ने रात को उसको काले काले काढ़े पिला पिला के उसको जागने के लिए, पढ़ने के लिए उत्सुक किया होगा, मेहनत कराई होगी, तो आज वो पढ़कर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कामयाब हो गया अपने जीवन में। लोग जब वो कामयाब हो गया तो लोग उसको गुड लक बोल रहे हैं, ये गुड लक की निशानी पिछले जन्म करके आई या उसकी इस जीवन में आई। तो जब हम ये देखते हैं, असलियत की तरफ नजर मारते हैं, किस्मत और कर्मा थ्योरी से अपनी सोचनी को हटाकर, तो क्या होता है कि जो इंसान कामयाब हुआ तो हमको मालूम होता है उसके उसके पीछे गुण क्या क्या थे। वहां पर कामयाबी की परिभाषा पूरी हुई, क्या उसने दिलेरी से काम किया होगा कहीं पर, उसने ईमानदारी से काम किया होगा कहीं पर, उसने अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए इंटेलेक्ट को पूरा यूज किया होगा, अंधविश्वास नहीं किया होगा कि नहीं 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 मैं इनको चेक दे देता हूं, अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मेरे पैसे वापस कर जाएंगे, ऐसे नहीं उसने किया होगा। ही वुड हैव यूज्ड हिज इंटेलेक्ट, कॉमन सेंस, जो बिजनेस के एथिक्स हैं। उसने अपनी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में उद्यम होगा, परिश्रमी हर टाइम, वो लेजी सुस्त नहीं होगा। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करते जाएंगे कि जो लोगों के जीवन में फेल्योर होता है, हम बोल देते हैं नहीं जी नहीं, अगर किस्मत में नहीं है तो एक इंसान ने इतनी मेहनत की, इतना सारा उसने दिन रात मेहनत की, बड़ी ईमानदार भी है वो इंसान, फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ। देखो उसने एक बिजनेस में हाथ डाला, फेल हो गया, दूसरे बिजनेस में हाथ डाला, फेल हो गया, फिर जगह बदल के आया, फिर पंजाब से दिल्ली चला गया, देखो जी दिल्ली से कानपुर चला गया, पर जहाँ जाता नहीं होता, किस्मत में ही नहीं लिखी तो क्या करे जी, हम ऐसे बोलते हैं ना जी। सब कोई अपने माथे पे लिखवा के लाया किस्मत इसलिए। पर कामयाब इंसान को आप खोज के देखें, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे जैनी है, चाहे बोधी है, चाहे चीनी है, चाहे थाई है, चाहे अमेरिकन है, उसकी कामयाबी के पीछे उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका दिन रात परिश्रमी, उद्यमी, और उसकी चुस्ती और उसकी ईमानदारी, ये सारे गुण जो है ना, इसको बोलते हैं उसकी कंसंट्रेशन अपने काम के पीछे। गुरुवाणी में बोलते हैं धुन में ध्यान। वो अपनी धुन में, धुन का पक्का था कि मैंने काम करना है। और जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, अगर हम उनको देखें, चाहे किसी भी मजहब वाले हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अगर नाकामयाब है तो उसके पीछे क्या होगा, नाकामयाबी के गुण ढूंढे तो मालूम पड़ेगा कि उसको धंधे के नियम मालूम नहीं थे पूरे, उसको बिजनेस के बारे में और अपने देश के बिजनेस के कानूनों के बारे में मालूम नहीं था, पूरा मालूम नहीं होगा, बाद में बोलता मेरे को शायद इसके बारे में मालूम नहीं था, मैं क्या करता। उसने हवाई महल बनाए होंगे, मैं ऐसे कर लूंगा रातों रात अमीर हो जाऊंगा, ऐसे करूंगा लोगों को दिखाऊंगा सोने की ईंट, और बाद में मैं शिपमेंट मिट्टी गारे की ईंटें भेज दूंगा, रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा। ये होता है हवाई पुलाव बनाना, नाकामयाबी के लक्षण। उसको इधर उधर समा गंवाने की आदत होगी। ऐसे बहुत लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा जो नाकामयाब हैं, सुस्त, जहां बैठे बात करते जा रहे हैं टाइम का कुछ मालूम नहीं है, जहां पर टाइम दिया था इकरार करके पहुंचते नहीं है वक्त पे, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो मेरे को मिलेगा ही, मेरी प्रालब्ध में लिखा हुआ तो मिलेगा ही, अगर मेरे माथे पे लिखा ही हुआ है, मेरे भाग्य में लिखा है तो कहीं नहीं जाता। पर जब वो ऐसी सुस्ती करते हैं, कई लोग तैयार होने में ही दो दो घंटे लगा देते हैं, और जब वो दो दो घंटे लगा के अपने ग्राहक के पास वहां पहुंचते हैं तो मालूम हुआ कि ग्राहक जा चुका है, उनको अपनी ये गलती मालूम नहीं कि मैं तैयार होने में दो घंटे लगाता हूं। लेकिन अगर उनको ग्राहक के पास या किसी मिनिस्टर के पास या कहीं भी डील लेने के लिए 7 o'clock 7 बजे अगर पहुंचना है तो उनको चाहिए वो 5 बजे तैयार होना शुरू करें। लेकिन अगर वो रोज की तरह उठे 6:30 बजे और 2 घंटे तैयार होकर 9:30 बजे ग्राहक के पास वहां जाएंगे, तो वो जो जिसको बोलते हैं ना होनी, जिसको बोलते हैं ना प्रालब्ध, वो अपनी ट्रेन, अपनी बस, अपनी बोट, अपना जहाज लेकर उड़ गई। क्यों? क्योंकि इसने टाइम का ध्यान नहीं रखा, इसने सुस्ती दिखाई, इसने बिजनेस एथिक्स को पूरा नहीं किया। और ऐसे ही उनके अंदर मैंने देखा है, सिर्फ मैंने नहीं देखा, आप लोग भी इस तरफ देख सकते हैं, आपने देखा होगा, मुझसे ज्यादा देखा होगा, मैं सिर्फ ध्यान दिलवा रहा हूं इस तरफ कि उनके अंदर खाने पीने का चस्का, उनके अंदर कोई ऐब, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जिसके कारण वो अपने धंधे में कामयाब पूरे नहीं हो रहे, और वो कहीं ना कहीं किसी गलत वादी में ग्रस्त रहते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं जहां उनकी बोट मिस हो गई, जाके बोलते हैं मैं लेट हो गया था, मेरी पत्नी ने रोक लिया, मेरी कार पंचर हो गई थी, हमारे घर की लाइट चली गई थी, दरअसल कार का पेट्रोल खत्म था, नहीं जब मैं जाने लगा हमारे कुड़म आ गए, हमारे समधी आ गए, हमारे ये आ गए, हमारे घर ये हो गया, गैस खत्म हो गई थी, नाश्ता नहीं बना था, कोई ना कोई वो बहाना मारते हैं। अगर ये बात मालूम हो जाए कि उनको ये मालूम ही नहीं कि मुझको करना क्या चाहिए था, मैं फिट किस लिए हूं, तो वो नाकामयाब रहेंगे। जो मर्जी धंधा वो कर लें, पर उनको धंधे की कामयाबी और नाकामयाबी के गुण और अवगुण के बारे में, बिजनेस एथिक्स के फेलियर और सक्सेस के बारे में, उसके पास होने के और उसके फेल होने के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो अल्टीमेटली वो लोग आखिरकार वो नाकामयाबी के फेलियर के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसी बात को सोचते सोचते एक और पॉइंट निकल आया कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी अपने आप में एक पैशन है जो इंसान को कामयाब कराता है। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो आप अपना काम ढंग से नहीं करेंगे। अगर ढंग से नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अब अगर इस पॉइंट को लें हम ध्यान से, तो क्या होता है? गरीब सोचता है, अरे हमारे तो पिछले जन्मों के कर्मों करके हमारे पिता गरीब थे और हमारे लिए कोई पैसा छोड़ नहीं गए, हमारा दादा दादे परदादे छोड़ नहीं गए। और ये जो लोग अमीर हैं, अजी ये जो अमीर लोग हैं ना, ये इसलिए अमीर हैं क्योंकि इनके दादे परदादे इनके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे। पर उनको ये नहीं मालूम, जो गरीब ऐसे बोल रहा है किसी अमीर की कामयाबी के ऊपर, उसको ये नहीं मालूम कि इसके दादा परदादा ने या इसके पिता ने जो पैसे कमाए थे वो रात तो रात कहीं से स्मगलिंग करके नहीं कमा लिए थे। उसके पीछे उनकी सच्चाई, उनकी दृढ़ता, उनकी हिम्मत, उनकी चुस्ती, उनका दिन रात पैदल पैदल दौड़ कर जाना, वो ये वेट नहीं करते थे कि मेरे को एयर कंडीशन कार दो तो मैं जाऊंगा। वो ये वेट नहीं करते थे कि अगर मैं अभी काम पे निकला, हम लोग सुनते हैं ना कि फलाना सुबह घर से निकला और रात को घर में घुसा, पर सारा दिन मेहनत करता रहा, पैदल चलता रहा, भूख उसने काटी, पानी नहीं पिया, इसलिए ये वाला गरीब आज इतना बड़ा सेठ बना है, इसने अपने टाइम पे इतनी मेहनत की। पर हम ये सोचते नहीं हैं कि उसने जब ये मेहनत की तो उस टाइम वो सारा सारा दिन कहीं पर खाना खाता नहीं था, कहीं पर बैठ के फालतू बातें नहीं करता रहता था, तो उसने अपनी पक्की धुन में अपने आप को कामयाब किया और कामयाब कर करके मेहनत कर करके पैसे कमाए। ये बात अलग है कि वो पैसे इतने सारे उसने कमाए कि आज अपने बच्चे के लिए छोड़ गया, पर उसने कहीं से हेरा फेरी से नहीं कमाए। सारे अमीर हेरा फेरी से नहीं कमाते हैं, चोरी से नहीं कमाते हैं, स्मगलिंग से तो नहीं कमाते हैं, कोई लाखों करोड़ों में एक ऐसे करता होगा, पर सारे अमीर तो ऐसे नहीं है। अगर वो अमीर का बेटा आज इसलिए अमीर है कि पिताजी या दादाजी पैसे छोड़ गए हैं, तो मालूम है वो बेटा क्या करेगा? अगर उसको अपनी जॉब के बारे में मालूम नहीं है, तो वो अपनी जिसको हम किस्मत बोल रहे हैं ना, इस किस्मत को काटा मार रहा होगा अगर वो इन्हीं माँ बाप के छोड़े हुए पैसों से अय्याशी कर रहा होगा, ताश खेल रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा, शराब पी रहा होगा, लड़कियों के पीछे भाग रहा होगा, दिन रात गलत कामों में खचत होगा ना, तो मालूम है वो पिता पुरखी की जो अमीरी है ना, वो सारी किस्मत के वर्के को फाड़ रही होगी। अगर किस्मत में लिखे के कारण अमीरी मिली होती तो ये अमीरी खत्म नहीं होनी चाहिए थी, पर वो बेटा अय्याशी से सारी को खत्म कर देते हैं। तभी तो ये ईडियम बना है कि भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं। कोई अमीर ये मत सोचे कि हमको किस्मत से मिला हुआ है, नहीं, अगर किस्मत से मिला है तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है, अगर वो अपनी मेहनत पैशन से, हिम्मत से, सच से कर रहा है, तो क्या होगा? उस टाइम वो अपनी कामयाबी को जरूर प्राप्त करेगा, चाहे पिता पुरखी का पैसा है लेकिन इसको मेंटेन रख सकेगा। अब ये समझना है कि अगर कर्मों के कारण, पिछले जन्म के कर्मों की किस्मत के कारण पैसे मिले हैं बाप दादे के अमीर लड़के को, तो फिर ये तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण वहीं पर फिक्स रहने चाहिए। पर अगर उसका जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आम तौर पे ये अमेरिका में सेइंग है कि जो दादे की बेटे के पास और बेटे की उसके बेटे के पास और उसके बेटे की उसके बेटे के पास अगर सेम बिजनेस की लड़ी चलती रहती है, तो वो बिजनेस कामयाब फुटिंग पे खड़ा हो जाता है, थर्ड जनरेशन तक अगर चला जाए। लेकिन अगर दादे का पिता के पास आ गया और पिता के पास जब बेटे के पास आया और इस बेटे ने अगर उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मींस उस बिजनेस को पैशन के साथ अगर नहीं किया, मान लिया वो लोग कपड़े का काम करते थे और इसका दिल कपड़े का काम करने का नहीं, कोई और काम करने का है, तो ये फिर जीरो स्क्रैच से उसको खड़ा करेगा, चाहे पैसा वो वाला यूज़ करेगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कामयाब हो के नहीं हो। लेकिन अगर उसका काम में मन ही नहीं लगता तो ये वो वाला सारा पैसा कुएं में डाल देगा, ख़त्म हो जाएगा, बैंक्रप्सी हो जाएगी, अय्याश हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, ड्रग बेचेगा, गलत कामों में फंस जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन अगर ना हो तो पिता पुरखी की कमाई जिसको किस्मत के साथ जोड़ रहे थे वो भी ख़त्म हो सकती है। किस्मत का पिछले जन्मों के कर्मों वाली थ्योरी अपने आप फेल हो गई ना। अब अगर हम देखें कि कई गरीब भी ऐसे होते हैं, कई गरीब क्या करते हैं, वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनके रिश्तेदारी में कोई इंसान अमीर होता है। वो जब गरीब अपने माता पिता के साथ उस अमीर रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वो अमीर रिश्तेदार के घर में इनको कोई ताना मार देता है, कोई टॉन्ट कर देता है, कोई ऐसा टॉन्ट इनकी तरफ कस देता है कि तुम लोग तो गरीब हो, क्या आ जाते हो रोज यहाँ पर, तुमको खाना खिलाना पड़ता है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, हमको शर्म आती है, हमारे और रिश्तेदारों के बीच में बुरा लगता है, हमारी फैक्ट्री की तरफ मत देखो, हमारे पैसे की तरफ मत देखो, कुछ ना कुछ ऐसा उनको जब ताना मारते हैं ना तो वो इसको अपने ऊपर चैलेंज ले लेते हैं, इसको चुनौती मान लेते हैं कि मैं तुमको कामयाब होके दिखाऊंगा। जब ऐसे ऐसे गरीब बच्चों के बारे में हम देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर मशहूर हैं जिनको उनके अमीर रिश्तेदारों ने उनको टॉन्ट किया या दूसरों के कंपैरिजन में उनको ठिट किया गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सड़क के ऊपर जो खंबे की लाइट है ना उसके नीचे बैठ के पढ़ाई शुरू कर दी, चाहे सारी सारी रात दिया जलाकर उसकी पढ़ाई उन्होंने की, चाहे लोगों से किताबें मांग मांग के सारी रात पढ़ने के बाद सुबह जाके वापस कर दी, चाहे रद्दी वाले से किताब उन्होंने सस्ती दोबारा सेकंड हैंड खरीद ली, चाहे लाइब्रेरी में जा जाके अपने नोट तैयार किए, पर उनको एक धुन थी, गरीब थे पर एक धुन थी कि मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, मैं गरीबों का बच्चा हूं पर मैंने कामयाब होना है। तो जब वो उस टाइम मेहनत करते हैं तो क्या करते हैं, वो इसको चुनौती ले लेते हैं और ये चुनौती सफल होने के लिए क्या हो गई, अणख, स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम। और ये जो स्वाभिमान सेल्फ एस्टीम अणख है ये उनको पैशन में ले आती है, वो फिर अपना जो काम करते हैं ना वो काम करते टाइम फुल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन और पैशन के साथ करते हुए पिछले जन्मों की कर्मा थ्योरी और तकदीर और माथे पे लिखे हुए लेखों को काट देते हैं और मेहनत करते हैं, मेहनत करके भूख काटते हैं, प्यास काटते हैं, रात रात को अखबारों को जोड़ जोड़ के थैले लिफाफे बना बना के बाजारों में बेच के आते हैं और दिन में पढ़ाई करते हैं, पता नहीं वो अपनी जिंदगी में सोते कब हैं। उनको किसी के पास खड़े होके ताश खेलने का, जुआ खेलने का, शराब पीने का, किट्टी पार्टी में बैठने का, फैशन दिखाने का, बाजार में शॉपिंग का समा नहीं होता है, मालूम ही नहीं होता वो कौन से जहान में रहते हैं। लेकिन जब वो कामयाब होके सामने आते हैं तो लोग जिन्होंने उनको टॉन्ट किया था, जिन्होंने उनको चुनौती दे दी थी, वो अपने दांतों में उंगलियां दे लेते हैं और सोचते हैं ये कामयाब कैसे हो गया, इसके पीछे मालूम नहीं कि उसने क्या क्या मेहनत की है, कैसे भूख काटी, कैसे प्यास काटी, कैसे उसने सर्दी को सहारा, कैसे उसने गर्मी सर्दी को बर्दाश्त किया। काश हम इसको समझें।